திரிகால கேவந்த விக்னஹரண மங்கள கர்ண ராமதாசியானந்த சரண ஸ்ரோஜ சங்க சேவனா மகிமாய கமயகாத் ராமச்சந்திர வர்ணன கரியோ குரு பூஜன விதயாத் பாஷட முனி குரு வந்தனா பராபராயண சாக் திருத்திய சுலக்ஷண பக்தி கோ க்ரோட சேஷய விலாஸ் குரு சேவன பகு அபரம பாரா பிராப்பத்தி கா மோக்ஷ காரா திரிமத சேவன கரேஜு கோயி பின் பின் கஹும் பிரபாவச கோயி நேமி சந்தமாஜன பரசங்கா பவன் சேவ குரு பரமய பங்கா இச்சக்ராபுர மேயவதூதா வாணி கடன் கஹயதூதா மேரே லட்சி காய கூட சாதயானந்தமீ வச்சன சுணாவே ஆய சோவாய கமாஜனலயோ. குரு சரணோ கி சேவா உத்தம ஹே ये बात स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा ने भी अवतारी पुरुष अवतार धारण करने वाले होकर के भी बात ही प्रकट की है. वर्णन सुनते हैं ना रामायण में, जब रामचंद्र जी अवरई में गुरु जी के साथ में विश्राम कर रहे थे तब तो गुरु महाराज पौड़ने लगे रात्रि के समय, तो लगे चरण चापण दो भाई. गुरु महाराज के चरणों की सेवा करने लगे, रात में चरण चंपी करने लगे. अब बताइए, दुनिया जिन चरणों का चिंतन करके आनंद का अनुभव करती है, वे स्वयं गुरु चरणों का पूजन करते, गुरु चरणों की सेवा करते हुए अपना जीवन धन्य मानते हैं, मनाते हैं. तो चरण सेवा में श्रेष्ठ, क्योंकि चरणों में स्वयं परमात्मा का, विष्णु का निवास स्थान है. चौदह दो देवताओं में चरणों में विष्णु का निवास स्थान हुआ करता है. भुजाओं में इंद्र का निवास स्थान है. इसी प्रकार चरणों में जो विष्णु का निवास है, तो आज वो उन्हीं चरणों की सेवा करते हैं. चरण सेवा की श्रेष्ठता में वे रामचंद्र जी ने ये चरण सेवा की है गुरु जी की. पर भगवान श्री कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम बनकर के आए द्वापर में, उनको भी चरण सेवा का काम बताया गया था, पता है ना. युधिष्ठिर जी महाराज के यज्ञ में सब लोगों को अलग अलग काम बताया, किसी को तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो. तो उसमें भगवान कृष्ण को काम बताया कि महाराज आने जाने वाले जितने भी ये अतिथि भगवान हैं, इनके चरणों की सेवा आप करो, चरण सेवा करो, चरण धो आने वालों के. तो चरणों की सेवा में कितनी विलक्षणता है स्वाभाविक. तो उनको भगवत भाव मान करके जहां चरण सेवा की जाती है, तो साक्षात भगवान की ही चरण सेवा होती है. तो गुरु महाराज की जो चरण सेवा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने गुरु पूजन की विधि बता करके, गुरु मर्यादा के पालन करने के बाद बता करके प्रकट की है, तो अवश्य ही उसका आदर सम्मान करना चाहिए, उसे समझ करके हृदय में धारण करना चाहिए. ऐसे भक्ति का जो लक्षण है हमारे हृदय में, उन चरण सेवा के कारण से बहुत विलक्षण सद्भाव पैदा करता है, और विलक्षण हृदय में प्रेम जागृत करता है. इसलिए चरण सेवा बड़ी उत्तम सेवा मानी गई है. गुरु सेवा में बड़ी विलक्षण शक्ति है. जिनको ये मिल जाती है, वे मोक्ष के अधिकारी हुआ करते हैं. जो तीन प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से सेवा करते हैं. दुनिया में सेवा करने वाले बहुत मिलते हैं, दूसरों से करवा देंगे, नौकर चाकर से करवा देंगे, लेकिन खुद करने में जोर आता है। पैसे देकर के कोई किसी की सेवा चाकरी करा देता है तो वो देखता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने इनकी सेवा कर दी, माता पिता की सेवा कर दी, ये कर दी, वो सेवा वास्तविक सेवा नहीं है। वास्तविक सेवा तो जो अपने हाथ से की जाए वही सेवा है, क्योंकि हाथ से की गई सेवा से अहंकार नष्ट होता है और पैसे की सेवा से अहंकार बढ़ता है, और जो हाथ से सेवा की जाती है उसमें अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार नष्ट हुए बिना सेवा कर नहीं सकता, अहंकार रहेगा तो सेवा कैसे करेगा, और सेवा करेगा तो अहंकार रहेगा नहीं। इस प्रकार ये मन वचन कर्म से चरण सेवा जो कोई करता है उनका बड़ा विचित्र प्रभाव होता है संसार में। इस विषय में बताते हैं कि मैं एक नेमी चंद जी की कथा सुनाना चाहता हूं। नेमी चंद महाजन, उनका प्रसंग जो अपने घर पर गुरु महाराज को बुलाते, जब भी गुरु महाराज पधारते तो उनकी खूब आव भगत करता, सेवा पूजा करता। बाहर भी जहां विराजमान है गुरु महाराज, वहां बारम्बार दर्शन करने के लिए जाता। एक गुरु महाराज को अपने यहां पर बुला करके सेवा करना चाहता है और एक वहां जहां विराजमान है वहां जाकर के सेवा करता है। इन दिनों में जो मन वचन कर्म से जो सेवा की जाती है, जो उत्तम रास्ता अच्छा लगे उसी को चुन सकते हैं। यद्यपि घर बुला के सेवा करनी अच्छी मानी गई है, परंतु कभी कभी यह अहंकार पैदा कर देती है, अहम भाव पैदा कर देती है। अगर अहम भाव पैदा होता है घर बुला के सेवा करने से तो वो सेवा चाकरी सफल नहीं है। सेवा तो वो है जो बिल्कुल सरलता ले आवे, अहंकार खत्म कर रहे। तो जहां विराजमान है वहीं पर सेवा है, जैसी उनकी प्रसन्नता हो उस प्रकार से सेवा की जाए, उनकी प्रसन्नता है वो सेवा की जाए। कोई देखे कि मैं करूं वही सेवा है, बस दृष्टांत सुनाते हैं ना भैया, वो सेवा गुरु जी के दो चेला गुरु जी की सेवा करता तो पोड़ जाता, जना चरण चंपी करता तो वो हटने कभी ओ कह तो ओ चरण दबाऊ, कोई कह ओ चरण दबाऊ, कह ओ हाथ दबाऊ, ओ हाथ दबाऊ। गुरु जी कह दे भाई रे तो झगड़ो मती, एक ने कह दे डाओ दबा रहे, एक ने जीवन दबा ले, अच्छी बात है जो हो महाराज। अब दोनों अपना अपना अलग अलग सेवा करने चालू कर दी। एक दिन गुरु जी विराजमान चेले ने कोई बारे भेजो तो जीवने पग वालो चेलो कोई बारे गियो करो डावो पग उन टेमरे माई ने अकेले एक ही पग ने दबावे, दूजोड़े हजू पड़ियो रोजी ने दबावे, कदे कदे नहीं दबावे जो दुख लाग जाए करे। इन बात रोज रोज सेवा करे तो ही सेवा करने नीचे तो हमेशा नहीं कर ली ठीक रहे, जो है जड़ी एक जड़ी आदत तो पड़ी रहे। अब वो दूजोड़ो पग दबे जने कह रहे भाई इन दबाव का नहीं, एक ही एक ने दबावे महाराज, इन्हें तो वो मारो गुरु भाई आए जना दबाए, मैं को दबाऊ नहीं, मैं तो मारा चरण दबाऊ, मारा चरण दबाऊ, इन्हें मैं दबाऊ को नहीं। ठीक महाराज जी के मूर्ख है, मूर्ख तो भाई पल्लो पड़े जना मूंद आग लेने चौकी है। आप लोग चरण उठा पर उन्हें मत मेल दियो, नहीं दबाओ तो पग नहीं दबा ला मारे गई। संतो भाई संत स्वभाव है, उन्हें दबा पर पग उन्हें आप पौड़ गया। इतने मायने वो दूजोड़ चेलो आएगो, वो दूजोड़ चेलो आयो और वो चेलो देखियो और मारे पग में तो ओ पग की चढ़ गयो, मारे पग में तो ओ पग चढ़ियो चढ़ियो क्यों होटो ले पर एक भचीड़ो मार दिया गुरु जी ने। जो को मां चढ़ी ओ रे टांग तोड़ दी रे चले क्यों पग माते, मारे पग माते, मारो पग क्यों चढ़ गई माते लो। अब वो पग रे दुखन लागे हो तो फाटे भी बांधे नहीं हो तो भाई राम पार्टी तो उन आए थे पग दबाव झुको बांधी मैं कहवा दबाता। अब वो चेलो आयो वो देखियो रे कही मारो पग टूटो की कर कहेंगे इन बात पग धर दियो दबाने बात है जो पग तोड़ दिया। अच्छा इन पग के कारण मारो पग टूटो डंडो मार पड़ा उन्हें तोड़ना के बहुत चढ़ा लो भाई आ सेवा के मारो मारो बंटवारो के सेवा करो सेवा करो आ सेवा काम रही है कही इन बिचार तो नहीं करनी चौकी भाई रे। जकी बात बता रही है कि नेमी चंद बड़े प्रेम भाव से गुरु महाराज ने अपने आप बुला करके भी सेवा करता और गुरु महाराज के पास जाकर के भी सेवा करता बड़ी विनम्रता के साथ में। एक बार की बात है एक चक्रा नगरी में बुनो जो दुकान ही चौराहे माते दुकान बड़ी अच्छी दुकान चलती ही अनाज की दुकान। उन टाइम री बात एक महात्मा जी अवधूत बाबा अवलिया पुरुष घूमता फिरता बाजार मायने आ रहा है और बाबा जी आते आते चलते चलते बोल रहा है कोई सूरवीर जो मेरे लट्ठी खाए है कोई सूरवीर जो मेरा डंडा खाए है कोई सूरवीर जो मेरा डंडा खाए। पागल बोले जो बोलता जावे पागल घड़े घूमे जना कहीं कहीं बोले कभी अंग्रेजी बोले नहीं बोलो कहीं कहीं बोलता रहा करे देखो लेकिन प्रकार बोलता जावे लोग देखे पागल आदमी परवाही नहीं करे परवाही नहीं करे। चलते चलते आगे बढ़िया तो उन महाजन जो है ना कहीं नेमी चंद जी वाली दुकान सामने पहुंचे यार वह मेरे लटकी खाए मेरे लट्ठी खाने वाला कोई है कहीं के संत महात्मा रा वचन जो मेरे लाठी है संतर तो वचन रूपी लाठी या करे भाई संतो वचन री लाठी मारे है वचन रूपी लाठी शू जीवारो कल्याण क्रिया करे सुधार क्रिया करे है इन वास्ते संतान का वचन ही लट्ठी रूप में या करे। तो मैं जान महाराज ने विनती करूं वो दुकान से उतर करके गियो महाराज ने प्रणाम करके महाराज और यो सूरवीर लाठी खाने वालो मारो लाठी महाराज के घर चल के मारेंगे तो महाराज थोड़ा दुकान में बिराज जाओ। महात्मा जी दुकान में जाकर के बैठ गए आसन लगा दिया बोरी बिछा दी और महात्मा जी दुकान में अंदर जाके बैठ गए आराम से। बाहर अपने इचरज शेष आद अंकुरा ब्राजो भवन राम जन पूरा बृंद वपार हाट में आसन छाजन भोजन सकल उपासन देखा वाणी को अनुसारा दर्शन परसन वचन बुहारा मात कन्या दो आई वाला अपने काज वाल मतवाला कन्या नगन मात को करही गदगद स्वामी देख बजर ही। अब महात्मा जी बैठ गया और सेठ जी अपने जो ग्राहक लोग आया बने समान मान दे रिया कर रिया है बने खातो चुका रिया है उधर सुबह ने अपना अपना काम निपटा दे उनको बाद में विचार करे। महात्मा जी सेठ जी विचार करे कि अब टाइम हो जावे व्यापार ग्राहक लोग निबड़ जावे उन बाद में घरे ले जाने महात्मा जी ने भोजन करावा पर ऐसे वो काम करने में लागोड़ है। कुछ देर में माँ और बेटी मतलब उन्हीं नेमी चंद्री बहू और वारी बेटी माँ बेटी दोनों दुकान में आई दुकान में पहुंची और आई सेठ जी ने भोजन री कहने वास्ते चलो सेठा भोजन कर लो भोजन तैयार है भोजन का समय हो चुका है आप भोजन करो। और महात्मा जी आया तो महात्मा जी के लिए भी भोजन तैयार है आप महात्मा जी ने लो और प्रसाद करने के लिए चलो। सेठ जी काम में लागोड़ा है जिधर काम लागोड़ा है जिधर सेठा ने भूख वूक हैंकटी गायब हो जाए करे हो काम नहीं वे निकमा भेजना भूखी लागे प्यास लागे काम में लागे जब सुबह शाम तक बैठा रहो भूख उकर पतो को नहीं पड़े अपने भी देख लो काम में लागोड़ा जना कोई याद को नहीं आवे और निकमा रहे मजना कई प्रकार की बात याद आवे दुनियाबारी की। इन्हीं प्रकार सेठ जी काफी देर तक अपने काम में लगा रहे लागोड़ा रिया। आखिर में कह तो दियो लेकिन रवाना नहीं हुआ जितने दोनों माँ बेटे हैं ये भी मोटी दुकान ही उनमें एक पाड़ खून अरबा ने ऊब गई। देखा देखा कहना चाला जने बचा तो चाला। वह माँ बेटे दोनों खड़ी हो गई। अब माँ बेटे खड़ी तो देखो बेटी है जो ऊबी ऊबी करे कहीं माँ कन ऊबी है तो मारा कपड़ा आगा पाछा करे हो, मतलब माँ नागी करे दुकान में छेड़छाड़ कर रही है बेटी। और पास में बैठा बाबा जी महात्मा जी उन्हें देख रिया है और देख देख करके बाबा जी मुस्कुरा रिया हंसी आ रही। बाबा जी ने जोर नहीं लेकिन मायने मायने हंस लिया है। इतर मायने नजर पड़ गई हेड जीरी के बाबा जी हंसे की करे। नजर भी बड़ी तीखी मजर तेज वेगा हंसी क्यों आई इन्हों कोई कारण। हंसने में कोई न कोई रहस्य होना चाहिए। इन प्रकार सेठ जी ने मंदिर मायने बात शंका बैठ गई। बाद में घरे चाले जी ने बाबा जी ने पूछे बाबा जी थे दुकान में हंसिया क्यों आओ, जिते आपने काम में धंधे में लागोड़ा रिया। अब शायद गुरु जी मारी हंसी कर रिया है एड़ो लागे है कि जनेदाना हंसी आई है और तो क्यों हंसी आई। दुनिया रे मायने जान बाबा जी मारे कोई न कोई गलती हुई है जिन्हें गलती है दुनिया ने सुनावे लाके लाग फलाणी एड़ो है वो फलाणी यूं एड़ो है। अंतर सदर टेक सुई धारण अंतकाल कैसो जन कारण। फिर भी मंदिर मायने संतान प्रति सद्भाव है जो कम नहीं करियो। अब काशी देर तीन ग्राहक जो एक रे बाद में एक आगे एक बे लैंड लागी आवता गया भीड़ मिट्टी को नहीं। काफी देर हो गई बाबा जी बैठा रिया माँ बेटे में भी दुकान में खड़ी रही और सेठ मंदिर मायने टेंशन जरूर आएगी कि बाबा जी हंसिया जो को कहीं कहीं बात जगह जरूर म्यानो लेनो पड़ी। इतने मायने कहीं हो अनाज भी बोरिया उठे अलग अलग तरह की रखी हुई ही नहीं बारे। एक बकरो आयो फिर तो बकरो आयो और बारह अनाज की बोरी पड़ी गंवारी बोरी पड़ी जिकड़ मायने दे मुंड देन अनाज खाने लागो बर्ड 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 गौ खाने लागो बकरो। सेठ की नजर पड़ी नेमी चंद्री करे बकरो गऊ खावे ताकड़ी कांटा एकदम छोड़ पर हाथ माने लाठी ले परी कूदियो बारे दुकान नीचे उतर पर चार हड़पट मारिया बकरा ने वो कर तो बकरो तो लाई वो जावे वो जावे बकरो भाग्यो आठी ने बकरो भागी और उन्हें होट मार दी। बाबा जी ने जोर हंसे पहले तो मुंडे मुंडे में हंसिया और अब की बाबा जी जोर जोर हंसन लागे और जोर हंसी सुनी ने सेठ जी ने लाई लागी कहीं बात हुई और मैं बकरा ने होट मारे तो बाबा जी ने हंसी की कराई। दया आनी चाहिए कम से कम राम 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 कोई जीव ने मारे करे तो दया आया करेगी। इन प्रकार हंसी आवे है कहीं न कहीं कोई न कोई गुड बात है। अभी जान बाबा जी पूछ सका बात कही क्यों हंसी है आप सज्जनों। इन प्रकार परियो किसान मरम नहीं पाया सदन अपने सदन अटन पदर आया स्वामी गिरा प्रकट दिखलाई देखो इतने जो हंस बलाई। जब इन प्रकार उठे सु दुकान रो काम निवटा प्राण घर में पहुंचिया घर में ले जान नीचे तो मन रेवासो हो रेवता करता ऊपर माड़ियो एक अलग से हो रहा है खेड़ो जो मेहमान वास्ते घर वास्ते आवता करता माड़े रमाने आया गया ने विश्राम देवता कोई अतिथि अति उठे थे जाया करता था तो बाबा जी ने लेन उन जगह उन माड़े रमाने आसन करायो और पंखो रख दियो जल भरन लायो जारी जल भाई जारी रख दी भोजन टैम होगी जनाब बाजोट रख पर प्रेम सु थाली लाने वास्ते गियो नीचे उतरियो नीचे उतर पर थाली लेन आयो बड़े श्रद्धा भक्ति भाव सु प्रेम सु संता ने भोग लागी भोजन प्रसाद पाई। इन प्रकार वो पोगोता 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 जीव ऊपर चढ़ियो। पहले जमाने में दरवाजा खटरा राखता था है बूढ़िया पर बड़ेरा मकान देख लो जो बड़ेरा मकान प्राय सब छोटे दरवाजे जा रही है બે કહેતા કે ભાઈ જુગન ચાલો કરડે મુદ્રા કહું છું હું તો એને વાતે છોટા દરવાજા રાખતા. હવે તો ભલે ઘોડારામાં તો બેઠા નહીં, માય પડજો હજુ રજો કાંઠે કઈ કોડે નહીં. એના સામે દરવાજા છોટા તું ઉંદર ચેતો રહ્યો કોને જોઉં ઉપર ચડ્યો અને ડાગડે જોકો દરવાજો હોવો છોટો જોકો જો શેઠ એકદમ ઉપર ચડતા માથેર લાગો ભચીર જોરો એકદમ માથેર જોરો ભીડ લાગો અરે મર્યો રે માથામાં ખૂન આવી ગયો જોરદાર. બાબાજી કમરે માને આમે બેઠા દેખતા હા બાબાજી તાળી માર શેઠ દેખ્યો રે મારે તો માથું ફૂટવા ને બાબાજી કહો તાળી બજાવે આઈ કોઈ વાત હે આજ ઘડી ઘડી હસી આવ્યો યો કઈ એડો મેં કઈ કેલો હું કઈ પાગલ હું કઈ હું કઈ કારણ કઈ હે. ત્રણ પ્રકાર થાલી લિયા ચડર પર માજન નખસ દુખ ચૂન ચૂન માસન. આ માત્ર માને ભચીડો લાગો છે શેઠ મંદિર માં વિચાર કર્યો ઓ ઘડી ઘડી માં તો ફોડે હે જગો. હવે મેં આજ તો બારે જા રહ્યો હું આપણે સાથે સાથે વ્યાપાર કરવા કે લી બહાર જાણો થો તો આજ તો મેં બહાર જા રહ્યો હું એક મહિનો પાછો આવ તો હેંગો હું પહેલે દરવાજો મોટો કરાવું ઓ દરવાજો છોટો જો મોટો કરાવું જો રોજ ને માથો નહીં ફૂટે જો. એસો મન મેં વિચાર કર્યો માથર ભચીડ લાગતા હો નખસ દુખ ચૂનત પુનિમાસન તારી દેહ કયો ને સ્વામી નમસ્કાર જન અંતરજામી વાયસ કાજ વયસ કાજ કે જાવત ગામા ત્રિવિધ ભેદ કયો અનુવામા. અબ વાત થાળી લે મહાત્માજી સામે રખ દી પાછો આયા જીતે કહી કે એક નો સાથી હો બો કહેવે શેઠ મેં ફલાણી જગ્યાએ જા રહ્યો હું વ્યાપાર વાસ્તે સામાન ખરીદને વાત થાળી ચાલ નો તો ચાલ પરો સવારી સાથે યા સાથે આપવા જાઓ પાછા લાણો તો ભાઈ મારે અનાજ ખરીદનો હે તો ચાલો પ્રજના પછી અકેલા જાઓ આજ સાત સાત માં ચાલા ઠીક હે ચાલો તો ચાલો. એમ પ્રકાર એક દોનો વેપરા ઓર સાથે રવાના હો ગયા. રવાના હોતે હોતે નેમિચંદ આપણી પત્ની ને કહ્યું હે હો ધ્યાન દેખ મેં તો બારે જા રહ્યો હું બાબાજી અટી જાય ભોજન કર્યો હે વિશ્રામ કર્યા હે તો યુ કરજે લારે ચલો જાઉં તો પાછો બાબાજી કને જાન તીન વાર આજ હસી આવી બાને હસીનું કારણ પૂછો. તીન વાર હસી આવી હતી દો વાર તો દુકાન મેં ઓર ત્રીસી વાર અબર હું ડાગળે ચડતી ટાઈમ માથારે ભચી લાગો છે ને હસી આવી હતી કઈ કારણે કારણ પતો લગાણો હે હેજી નહીં ચલા જાવે એની વાત પૂછ લેજે યાદ રાખ કરકે જો કહું છું પૂછ લે આપ જાઓ પોતે લઈ પાટી આટી ફૂંબો લગાવ પાટી બાંધ બનાવ આપણે વ્યાપાર મેં ચલો ગયો કોઈ જેને કામ જાણો તો ઉઠીને. અબ તીન પ્રકાર તીન પ્રકાર જો ભેદ માલુમ કરનેરી વાત પૂછતી કંત દિશંતર નાર ઉચારી હે ઉપાસ આપ સિદ્ધકારી. અબ આ મહાત્માજી વિશ્રામ કર્યા હતા વિશ્રામ કરને કે બાદ મેં વા નેમિચંદ કી પત્ની વા ગઈ મહાત્માજી ઉપર બેઠા વાને પ્રણામ કર્યા પ્રણામ કરકે નિવેદન કર્યો કે મહારાજ આજ મારા પતિદેવ બતાવ્યો કે આપને તીન વાર હસી આવી હતી તો તીન વાર હસી આણેરો કારણ કહીએ મહારાજ મેં જાણની ચાહું આપ કૃપા કરકે બતા દો સંત મહાત્મા દયાલુ હો એસી કોઈ વાત નહીં જો છુપાવે એના વાસ્તે મહાત્માજી કહે બેટા એમાં થારે ભલેરી જ વાત એના વાસ્તે મને હસી આવી ગયા છે. કઈ વાત આવી કી કર પહેલી વાર તો મને હસી જ આવી કે તું થારી બેટી દુકાન મેં આયા તો દુકાન મેં આયા ઉન ટાઈમે મેં ઉઠે બેઠો ઓર થારે બેટી બાર બાર કપડા ઊંચા કરે નીચા કરે ઊંચા કરે નીચા કરે મતલબ થારી લાજ શ્રમ ગમાણી ચાવે ભરે સરે આમ સરે બજાર મેં કોઈ દુનિયા દેખે લાજ ગમાવે તો ઓ કામ કરે થારી બેટી આ કોણ થને ઠાય મહારાજ મન તો પતો કોને આ પહેલે જન્મ રમાય ને થારી શોખ હિ શોખ ઉન ટેમ શોખ ના ધારો કોઈ નો એડો મંદ રમાય ને દ્વેષ બેઠ ગયો ઉન ટેમ તો કોઈ જોર લાગો કો નહી મરપરી ને બેટી ભણપરી ને આઈ બદલો કાઢે અમે વાત અબ થારી શરમ ગમાણી ચાવે બજાર રમાય ને દુનિયા રમાય ને નાગી ખરપરી ને એન વાસ્તે જરા મને હસી આવી ગઈ દેખો દેખો અમારા બેટા બેટી અમારા સંબંધી વહે કેળા ચોખા લાગે પરંતુ લારે કેળો કેળો મારો સંબંધ હે પતો કોની બે કેળા ભાવ લઈને આવે ને કઈ અપાને દશા કરે કોણ જાણે लेकिन पूरी जन्मरी बात याद आकर के मने वहां हंसी आएगी महाराज, आ बेटी थारी पहले जन्मरी शौक इन कारण उन टाइम दो आ बात याद आई। जग उपहास आप सिद्धकारी जन दृष्टांत कयो बुद्धवंता पूर्व शौक दोष भुगतनता। और दूसरी बार मने हंसी जद आई थी कि बकरो आपरोन बोरे रमाए रखियोड़ा गहू खाने लागो, और बकरो पहले जन्म में थारो सुसरो है सुसरो, इन दुकान रमाने आटे बैठो रहे तो रोजी ना आटे थारे धनीरी जगह काम कर दो, इन दुकान ने आप भी मानता उन टाइम में मर प्रोन वही बकरो बण प्रोन आएगो पाछो, ओ देखे मारे अनाज है मारी दुकान है तो मारे अनाज में खाऊं, एड़ो मान करके खाऊं लागो तो उन्हों बेटो कैडी दशा करी है जो मा तो फोड़ ना के बेचारे। देखो तो जन्म पहले जन्म रमाई ने कई वे दूसरे जन्म रमाई ने कई बन करके आवे कौन जाने भाई, आप घर आप ही दुकान आप अनाज होने पर भी आज दूसरे जन्म में चलोगी और बकरो खा नहीं सके तो मिनक भी है इन जन्म ने छोड़ करके आगे कैडी जोड़ी रमाई चलो जावे और उन्हें अपनो माने उन्हें अपनापणों ने काम नहीं आया करे। भाइयों बहनों पहले जनवरी बाद भगवान अपन याद नहीं रखावे, आप बढ़िया करे, अगर पहले जन्म की बात याद नहीं वे तो संसार में अपन जीनो मुश्किल हो जावे। दूजे जाना जीना जनावर ने याद रहे कई जन्मा की बात याद रहे पुरुषवान रहे पंखी रवान रहे दूजा है जगह नहेंगा तो पहले जनवरी बात याद रहे लेकिन आप मुनक ने याद हो रहा है। एक बार मिनक ने इन प्रकार याद अगर रह जावे तो मुश्किल हो जावे। देखो जनक महाराज एक बार पूछियो गुरुजी ने महाराज मारी जो रानी है आ बड़ी आज्ञाकारिणी है सेवा परायण है पहले जन्म रमाई ने इनो मारो कई संबंध हो इतनी आज्ञाकारिणी कैसी है। गुरुजी कह रहे हैं तो भाई है जगह छोड़ो नहीं तो कहीं बात ले लो कहीं याद नहीं करनी पहले जन्मे बात नहीं महाराज बताओ मानते बताओ 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 घणो हट करियो बताने करियो जना ले कमंडलो जल लेन आंखें लगा जल लेन जी आंखें लगाया जना मालूम पड़ेगा तो पहले जन्म हमारी माँ ही आ उन जन्म में माँ है रब की बन के आई स्त्री। घबरा गया राजा कहे महाराज आ गई बात मैं पहले क्यों नहीं भगवान कृपा करे याद नहीं दिलावे ठीक है तो याद नहीं दिलावे जब संसार मैंने आप निश्चिंत होकर के जी सका व्यवहार कर सका और पहले वाली जन्म री बात याद वह तो वे संसार व्यवहार नहीं उन्हें देवे। सज्जन इन्हीं प्रकार बकरो सुसरो बन करके आयो बकरो पहले जन्म में सुसरो और बकरो बनना आयो है और अनाज खायो तो भी खाऊ देवे नहीं जूता पड़े उन खोट मत है। महाराज तीसरी बात बताओ तीसरी बात जब हमारे पति देव रे माथे में चोट लागी जना आपने हंसी आई इनो कई कारण है जना महात्मा जी कहने लग गया है ताते हंसी आवत बाई भरम जाल अज्ञान भुलाई अटन चुड़ावन हारो मासा अंतकाल खूटी वैसासा मुर्ज परी जबते किलराणी समृत राम आप विज्ञानी परम दयाल बचे मुई कंदा अकरण करण साध बुद्ध बनता। महात्मा जी कहने लग गया देख तो बेटा बात ऐसी है कि जिन टाइम थारे इन आदमी ने माथा रमाई ने भचीड़ो लागो ने चोट लगी चोट लगता ही मन रमाई ने बात आई कि मैं एक महीने रमाई ने दरवाजा ने ऊंचो कर रोज ने माँ तो बुढ़े इन वास्ते महीने पर बाद में मैं आज तो बाहर जाऊं लेकिन पचाओ तो महीना इन मकान ने दरवाजा पहले ऊंचो करूं। उन्हें मन रमाई ने बात आई है मकान ने दरवाजा ने ऊंचो करने की परंतु और जो बाहर जा रही है आने रे पहले इन्हें तो मौत हो जाए मर जाए मर जाए दरवाजे ऊंचो कौन करी पहले मर जाए तो उम्र खत्म हो चुकी इनकी। अब जो है वचन निकले आप सुनते ही बात रानी एकदम रानी कहीं वास्ते टाणी रो पड़ी एकदम चिल्लाटो कर बैठी हे महाराज आओ कहीं वचन फूल मारे आओ वचन तो सही है जी की बात बताओ बेटा उम्र खत्म होने के बाद में कोई रह सके नहीं समय गए कोई रह न पावे काल झपट खारी उमरिया बीत रही प्यारी। महाराज ऐसी बात अब महाराज का चरण पकड़ करके विनती करे आप सत्पुरुष हो कृपा करके जैसे भी हमारे पतिदेव ने जीवन दान मिले ऐसी आप कोई न कोई युक्ति बताओ। नमो जन महाराज वंदन ईश अवगत साइया, तुम तरण तारण करण कारण अभेदान सदाइया, वे अवध पूर्ण स्वाग स्वामी करत आप आसान है, नित सेव देवम पूज पूजन अभेदान पिराण है। आपने वंदन है महाराज, आप जीवन अभेदान देने वाला हो, आप साक्षात परमात्मा के समान योग्यता क्षमता रखने वाला हो, डूबने वाला न तारने वाला हो, जो हमारे पतिदेव की अवधि पूर्ण हो चुकी है, आप कृपा करके इन अवधि ने बढ़ाने की कृपा करो, ऐसी हमारी आपसे विनती है। नित सेव देवम पूज पूजन अभेदान पिराणम, मैं आपके इन चरणारी सेवा करते हुए आपने चरण पकड़ करके आई विनती कर रही हूँ कि माने हमारे इन पतिदेव ने अभेदान प्रदान कराओ, आई मृत्यु ने आप कृपा करके दूर कराओ। मन वंचत फल पाए जे कोई सेवत साधको, कोट विघन दुख जाए प्रभाव वर्ण हूं कहा, जय कोरा कोर अनेक गुरु सदगत भूलू नहीं, अपरंपार बस एक पात पात पुस्तक मही, जान अजानों को जो कोई सेवत साधको, इमरत विषगत हो आपो आप लखावी। मन चय फल प्राप्त हो जावे यदि कोई कपट छल छोड़ करके संत महापुरुषों की सेवा करे तो करोड़ों विघ्न मिट जाए करे, ऐसे महापुरुषों रो प्रभाव में कैसे वर्णन कर सकूं। करोड़ान करोड़ प्राणी जो गुरु महाराज को शरणों ले चुका है, वाली सदगति हो चुकी है, मैं वाने बार बार वंदन करूं, महिमा अपरंपार है, एक एक पत्ते पत्ते में एक पुस्तक में ऐसे महापुरुषों के प्रभाव की बात लिखी हुई है कि जो कोई जान करके या अनजान करके भी कोई सत्पुरुषों की सेवा कर ले तो जहर खाड़े हुआ है तो जहर भी अमृत बन जाया करे है, अपनो आप उन्हें अनुभव हो जाया करे है, वह विष ने भी अमृत बना देने की शक्ति ऐसे सत्पुरुषों रे मायने या करे महाराज। इन प्रकार बाद रानी निवेदन की ओर महापुरुषों का वचन भी यही बात बताया करे है। संत महात्मा उन्हें बात सुनकर के कहने लग गया है, जन महाराज कहो सुन भाई, पंखी चूण सवाय सदाई, सत व्रत धार सदा व्रत एहा, मन वच कर्म फल सिद्ध तेहा, षष्ठ दंडोत प्रकम्मा कर ही, तस जुग वंद धरण चित धरी, गुरु महाराज नमो भगवाना, पावन दीक्षा सदगत ज्ञाना, राम मंत्र दीनो उपदेशा, खंडन आन उपाय करेशा, शुद्ध कन्या सो नाम कृतारत, चले दिशंतर जन परमारत। महात्मा जी से विनती की तो महात्मा जी ने जवाब दियो, भाई बात सुन, देखो जो प्राणी परमात्मा के सम्मुख होकर के परमात्मा भाव से परमार्थ को काम करना चालू कर देवे है, उन्हें ऊपर आने वाला अनेक प्रकार का संकट सहज में दूर हो जाए करे। सुनो भाई, इनलिए एक सरल उपाय मारे समझ में आवे जो मैं थाने बताऊं, आज से नियम पकड़ ले, अपने घर में सवायो अनाज पक्षी आने चुगाना चालू कर दे, पंखे रुवाने पक्षी आने सवायो दान, पक्षी मात्र बतावे मैंने केवल कबूतरा को कारण नहीं है, भाई कोई भी पक्षी आवे जो पंखी चूण सवाय चुगाई, सवायरो मतलब अब वास्तविक तो कहीं है वह तो वे जाने, लेकिन दो तरीके व्या करे, एक तो जितो आज डालियो है नी उनसे कल सवा होनी चाहिए, आज तो शेर है कल सवा शेर, अगले दिन उनसु फिर सवायो, फिर उनसु आगे उन दिन सवायो, ऐसे प्रतिदिन मतलब मात्रा बढ़ा तो जावे, सवा शेर सवा दो शेर सवा तीन शेर कैसे भी है जो मतलब सवा शेर, ऐसे सवायो जो वो अनाज डालने को नियम धारण कर लो, पक्षियों ने अनाज चुगाने को चाम चालू कर दो, और समझो कि इन पक्षी के रूप में साक्षात भगवान ही मारा अन्न जल स्वीकार कर लिया है, तो अन्न खिला करके जल को पात्र भी पास में रख दो, जिनसे जल पी करके तृप्त वेला और संतुष्ट होकर के जावेला तो तने आशीर्वाद देवेला, और आन लोगों ने आशीर्वाद सु भगवान रो आशीर्वाद समझ करके अपने पति की जो दीर्घायु की कामना करो, तो ऐसे परमार्थिक कार्य के द्वारा थारे मन की कामना सफल हो सके। धर्मो रक्षति रक्षितः, या बताया कि धर्म की रक्षा करो, धर्म अपनी रक्षा करेला। मन वचन कर्म सु भावना राखनी है और जरूर थारो मनोरथ सफल वेला। उन्हें बाद में साष्टांग दंडोत करियो भाई, परिक्रमा देवी महात्मा जी री दोनों हाथ जोड़ करके और मस्तक जमीन पर लगा करके चरणा में वंदन करियो। कहने लगी, हे गुरु महाराज, आपने बार बार वंदन है, आज कृपा करके इन पतित प्राणी ने अपने चरणारी दासी बनाओ, आप आशीर्वाद दिलाओ, आपने आशीर्वाद सु जीवन सफल वेला। इन्हें बाद में भगवान को राम नाम को मंत्र दियो, उन्हें उपदेश दियो, आन उपासना री बात सब छुड़ाई और कह दियो, नाम शुद्ध कन्या सो नाम कृता, आज सु थारो नाम शुद्ध कन्या है। सुकन्या जी ने कह करे, शुद्ध कन्या सुकन्या, आज सु थारो नाम, नवीन गुरु दीक्षा के समय नामकरण भी चेंज हो जाएगा, चेंज हो। इन प्रकार उन्हें दीक्षा प्रदान की, उन्हें जीवन सफल करियो और महात्मा जी ने प्रणाम करके विदाई दी। महात्मा जी आशीर्वाद देता हुआ उठे सु गवन करके चला गया, रवाना हो गया। जी संतर गुरु आज्ञा से अब आनंद हृदय रमाने दिनों दिन बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन नया नया अनेक पक्षी वहां पर उठे आने लग गया और जिन दिनों दिन पक्षी बढ़े तो वह भी अनाज भी सवय बढ़ाती जावे। नित नवीन सदा सुखचारा आयो भवन आपनो प्यारा, पत्नी गुरु प्रभाव सुनायो निमी चंद्र सुनी अति सुख पायो। अब देखो निमी चंद्र बारे गियो, कई दिन लाग गया, महीने भर करीबन समय लागो। अब पैदल आया करता था, पहले यात्रा पैदल ही हुआ करती थी। साथी जो गयो तो वो तो आप गांव आयो जना अपने गांव के दूसरे रास्ते चलो गयो। नेमी चंद आपने पैदल अपने गांव के रास्ते माते आ रियो है, जंगल के रास्ते से आप बढ़ रही हो तो आगे आओ। तो रास्ते में एक बावड़ी आई, प्यास लगी तो बावड़ी में पानी पीने वास्ते गियो, बावड़ी में जाने पानी पी लो। उन्हीं टेमरी बात, वन में घूमते फिरते एक शेर भी पानी पीने के लिए उन्हीं बावड़ी की तरफ चलो आयो। शेर उन बावड़ी की तरफ आयो, परंतु बात मालूम है कि शेर चाले जना चुपचाप नहीं चालिया करे, गर्जना कर तो चालिया करे, दहाड़ तो चाले। नेमी चंद बावड़ी रमा ने गीवड़ो हाथ पग धोया, पानी आने पिए करे। शेर भी चलते चलते उन बावड़ी के पास में पहुंचियो और पहुंच करके जोर सु गर्जना करी, जोर सु गर्जना करी। उन्हें आदमी ने उस शेर की गंध भी आ गई कि आदमी है कोई, अब तुम्हें खुशी हुई जना खुशी रमाने जोर सु दहाड़ मारी। अब सिंह की दहाड़ सुनते ही एकदम उन्हें तो हाथ पग फूल गया बेचारे का, अब मैं भारत जाऊं और शेर मने खा जाए। और बावड़ी नीचे खड़ो सामने देखे तो वो शेर दरवाजा मत ही खड़ो, बावड़ी दरवाजा सामने पोगो तो मत खड़ो, वो तो ऊपर चढ़ने चावे वो मायने उतरने चावे। एडी टेमर मायने वो शेर ने जो मनुष्य की गंध आ रही है और ज्यादा ज्यादा दहाड़ मारने लागो। अब ऐसी टेम में भगवान कैसी कृपा करे, वो देवी चंदो एकदम मूर्छित होकर के पानी के किनारे मत पड़ गयो, कुएर मायने बावड़ी में पोगो तो मत है। अब तो आज मर गया, मौत आ गई, अब तो जिंदो जा नहीं सको, करे कहीं कौन बचावे। अब दरवाजा में तो शेर खड़ा, उड़के में जा सकू नहीं, परंतु भगवत की कृपा ऐसी हुई कि जिन पक्षियों ने अनाज चुगाया था, कबूतर बावड़ी रमाने चारों तरफ बैठा था, बहुत कबूतर बैठा था, शेर की दहाड़ सुनकर के सब कबूतर एकदम उड़ गया, फड़फड़ फड़फड़ फड़ करके कबूतर उड़ने लगा और उड़ करके शेर के काना मत जान बैठ गया, मत मत बैठ गया और काना कने फड़फड़ फड़फड़ करने लग गया शेर। अब मैं तो हटी उठी करे, लेकिन कबूतर तो आंखें माते लगावे, मोरा माते का काना मत है, टूचा मारे इन प्रकार पंजेरी झपट मारी है, शेर घबरा गयो, ओ कहीं गिर आएगी मारी बहुत आएगी, वो तो पाचो मुंडो फेर पड़ो जंगल में हो रहा रही जो तेतीस बनाएगी तो पाचो मुंडे को फेर देने शेर। पक्षियों ने चूग चुनाया देखो याद रख, पक्षियों ने चुगो चुगाया तो पक्षी समय पर आकर के किन प्रकार सैनिक लोग जिन प्रकार काम करे उनसे ज्यादा काम करके शेर ने भगा दियो और शेर जंगल में चलो गयो। कबूतर पाचा आप लठाए जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर में नेमीचंद ने होश आयो, देखियो रे कहीं मरियो तो कोनी, शेर खायो कोनी मने, पर देखिया तो शेर है ही कोनी। ओ हो कई बात हुई, कोई मने भ्रम जाल आएगो, कोई नींद आएगो, झोको आएगो, वेला जिकन कहीं डा शेर दी की वेला शेर है ही कोनी हटो। पाचो पानी ने पीन बारे निकलियो चलो गयो। आप घरे पहुंचो, पत्नी देखियो और पतिदेव आ गया है, बड़ी खुशी की बात, बड़ी खुशी की बात है, जीता आएगा। क्यों महात्मा जी तो कहे तो आने ने पहले ने मौत लिखी है, लेकिन आज जीवित आ गया है, बड़ी खुशी की बात है। मतलब महात्मा जी ने पक्षियों की सेवा की बात बताई, वह सार्थक हुई है, कभी निरर्थक नहीं है। इन वास्तव में अपार हर्ष है, खूब अपने पति की उल्लासपूर्वक सेवा करे और हमारे इन प्रकार हर प्रकार से अगवानी करे। नेमीचंद बैठियो, बैठते ही आपने पत्नी ने पहले सुबह बात पूछे कि बाबा जी ने हंसनेरी बात पूछी कि नहीं, हंसनेरी कारण पूछियो नहीं पूछियो। जब आ बात पूछी जना पत्नी कहने लगी है पति देव ने कि महाराज पहले एक बात बताओ, मैंने आप वापस आती टाइम रे मैंने जब लौट लिया था तो आपने कोई तकलीफ तो नहीं आई, सामने कोई संकट तो नहीं आयो? अब वो संकट आप बात पूछी जना एकदम उन्हें याद आएगी, करे संकट के यही मर्द मौत आएगी थी। मैं बावड़ी में पानी पीने के लिए गयो और एक शेर आ गया बावड़ी पर। अब मैं खुद अब निजरा देख क्यों शेर ने बावड़ी में उतर रही है, मैं तो बेहोश हो गया। उन्हें शेर ने आता देख करके उन बाद में कहीं था कही हो शेर कटी भाग्य पतो नहीं और मैं जीवित लौट करके आयो हूं। जब आ बात हुई, आ बात सुनकर के वह पत्नी माने जवाब दियो, सुनियो पत्नी माने जवाब दियो कि माँ ये पतिदेव आज जो आप इन टाइम रामायण सुरक्षित लौट करके आया हो, ओ बाबा जी ने हंसी प्रताप है। आप जिन टाइम माथे चोट लगने पर दुखी होया था उन टाइम बाबा जी ने हंसी आई थी। जना वे बताया थारे मन में कई बात आई थी, मारे मन में आई कि दरवाजे बार बार मत फूटे इन वास्ते अब की पाछ आप रोन महीने हूं इन दरवाजे पहले ठीको कराओ ऊंचो करा, आ मन में आई थी। जना बाबा जी ने हंसी आई कि ओ तो महीने में पाछ आवे को नहीं बिची मौत आ जाई, मौत आ गई थी लेकिन संत महात्मा कृपा करके और आपने बचाने वास्ते और तरीको बता दियो, इन तरीके के अनुसार वास्तव रामायण आप रो आज बचाव हुयो है, अन्यथा कोई बचाव री उम्मीद नहीं थी। पत्नी गुरु प्रभाव सुनायो, नेमीचंद सुनी अति सुख पायो। दिन दिन नार गुरु महाराजा जुगल समीप श्रेयो सिद्ध काजा। आ बात सुनी जना वास्तव रामायण नेमीचंद के धन्य हो देवी, तू गुरु महाराज को शरण ले लियो है और गुरु शरण के प्रताप सु आज तू भी सुग्री बन गई है, तुम्हारो भी जीवन निर्मल बना दिया है, मैं भी सतपुरुषारा चरणा रामायण बैठ और शुक्र बन करके भगवत भजन करने चाहूं। वास्तव रामायण सीताराम विप्र जो कीनो पतिव्रता सुकन्या सुख दीनो। देखो आज तो बात ऐसी करी है जैसे सीताराम की पत्नी जो थी वह शुभ काम करके आपका पति ने मुक्ति को मार्ग बतायो, उन्हीं प्रकार तू भी मारे भी मुक्ति के मार्ग में तो लगाने वाले बन गई है। इन वास्ते मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप में मान रही हूं। सो अर्दंग्या तुम सुखदायक जीवन प्राण गुरु गम पाएक। आज गुरु महाराज को आश्रय पा करके केवल तू ही भाग्यशाली बनी इतनी बात नहीं है, मैंने भी भाग्यशाली बनायो है। इन वास्ते मैंने बहुत ही प्रसन्नता है। सुख ध्वज जूई में रेयो रानी ज्ञान मदन शब दयो। दिन चंडाला पतिव्रत नारी नृपोपदेश मोक्षकारी। जब आज जो मैं तो एक सुख ध्वज की तरह बड़ेड़ रही हूं पर तू जो है चूड़ाला जो रानी थी उनके समान मारे लिए कल्याण को मार्ग प्रशस्त करने वाली मिल गई है। धन्यवाद है तू वंदनीय है प्रणाम करने लायक है। सुकन्या जो शुद्ध कन्या जो थी नहीं कि अब गुरु महाराज दियोड़ नाम है इन सेठ जी की पत्नी को ना वह कहने लगी है कि महाराज सुखद ध्वज की कथा कहीं मने बता दो, किन प्रकार जो सुखद ध्वज राजा ने उन्हीं रानी जो मुक्ति को मार्ग बतायो मोक्ष मार्ग में मैंने कैसे लगाया मैं बानने जानने चाहूं। उन बाद में सीताराम ब्राह्मण की कथा भी है, आप कृपा करके मैंने बताओ। जो दोनों आप नाम लियो, सीताराम ब्राह्मण के समान मैं हूँ और बाद में कहो कि मैं सुखद ध्वज राजा के समान हूँ, दोनों ने हमारी स्त्री ही मुक्ति के मार्ग में लगा करके हमारो कल्याण किया है, इन वास्ते पहले सुखद ध्वज की कथा मैंने सुनाओ। चंडाला ध्रुव को समझायो, जब पहले जो बात पूछी सीताराम ब्राह्मण की कथा, अब सीताराम की बात पूछी तो सीताराम को प्रसंग है बताने लगा है। एक ब्राह्मण देवता, एक विप्र के धन बहुतेरो, पुत्र बिना घर माही अंधेरो, कर्म संजोग भयो सुत जाके, मात पिता मिल गोदी राखे, बाल अवस्था पौगन बीती, मात पिता के दिन दिन प्रीति, यूं करता किशोर वय आई, पितु गिरसत विधि करी सगाई, घर भर जोड़ कन्या भल सूरत, ब्याव रचाए सदन सुख मुहूर्त, उठत श्रीकुण साल सुनायक, करूं स्नान नीर भर लायक, दुल्ही मान लजा कुल कारण, ऊठी नाक जो वचन उच्चारण, प्रथम वचन मम कियो न कोई, मम इन पूरी पड़े न दोई, अचल अलखाय नदी की तीरा, माता स्वालन मान्यो धीरा। एक ब्राह्मण देवता जिका धन संपत्ति बहुत थी पास में, परंतु कमी थी तो एक घर में बेटो नहीं, बेटे के बिना घर में अंधारो है। संयोग से कई वर्ष बीत गया, होते होते हमारे एक बेटे रो जन्म हुयो, माता पिता खूब लाड करे बेटे रो, हमेशा गोदी में लिया लिया फिरे, बाल अवस्था बीती, पोगंड अवस्था बीती, माता पिता री दिन प्रतिदिन हमारे प्रति प्रीति ही बढ़ती गई, करता करता किशोर अवस्था आ गई, ब्याह कर ले रही उम्र हुई, माता पिता घर गृहस्थी रो अपनो कर्तव्य मान करके कोई घर में कन्या ने देख और उन सगाई कर दी, घर भर जोड़ कन्या भल सूरत, लड़की अच्छी पसंद आएगी, घर भी अच्छा है, वाने भी लड़को भी पसंद आएगा, दोनों जना मिल करके ब्याह शादी रो प्रस्ताव स्वीकार कर लियो, सगाई हुई, समय माते शुभ मुहूर्त निकाल करके ब्याह करियो, खूब लाड कोट से ब्याह हुयो, और ब्याह की विधि पूर्ण हो जाने के बाद उन पत्नी ने लेकर के उन ब्राह्मण को बेटे रो नाम होनी, उन नाम सीताराम आया। वो सीताराम जब ब्याह करके घर पर आयो, अपनी पत्नी जो थी दूसरे दिन सुबह उठते ही अट गड़बड़ पैदा हुआ, उठते ही अपनी पत्नी ने कहो करूं स्नान नीर भर लायक, बाल्टी पानी भर करके जल्दी लेके आ मैं स्नान करूं, आज सुबह उठ गई, पहले पहले आ बात उन्हें कही, नई बिंदी आई हुई बेचारी घर में, उन्हें शर्म आएगी, वह कि मैं वो कहीं काम करूं कहीं लोग कहीं कही, इन वास्ते वह उन बात पे ध्यान नहीं दियो, उठी ना कुछ वचन उच्चारण नहीं तो वो भी हुई और नहीं कहीं बाने हाँ या ना रो जवाब दियो लज्जा के कारण से, और सीताराम रे मंदिर मैंने बात आएगी, प्रथम वचन मम कियो ने कोई, मैं जो पहली बात इन्हें कही और मेरी पहली बात की परवाह नहीं करी, नुकर दी, इन वास्ते इन्हें लगे कि मारे जीवन रमायने इन हमारो साथ निभेला को नहीं, निभने को नहीं है जीवन में साथ, पहली बात में इन प्रकार अटकाव आ गयो, अरे प्रथम ग्रास से मक्ष का पाता क्या करे तो जीवन लागे कबो लेते हैं, पहले कबे रमायने मक्खी निकल जा, अब कहो भोजन लागे ला लो ये ग्लानी आने लाग जा, तो अब मारो इन जो आपस में पूरा पढ़ना मुश्किल है, इन वास्ते इन्हें त्याग देनी चीज आप मन में आएगी बात, आप त्यागने के लिए उन्हें कुछ नहीं कियो, आप अकेले ही घर छोड़ करके चल दियो, उन्हें घरों बारे काटे नहीं, आप खुद निकल गयो, मारे निभने वाले नहीं है, इन वास्ते एक नदी के किनारे पर जाकर के उठो तपस्या करनी चालू की थी। यद्यपि माता और पिता घणो ही ने बुझाया समझाया प्रेम करियो लौटाए, लेकिन नहीं नहीं मानो तो नहीं, बस कार्यम व साधियम देहम व पातियम, बात निर्णय कर लियो ने वापस बदलना नहीं। अब बैठे जाने पर इन्हें मन में विचार आयो कि मन का कोई भी संकल्प है शंकर भगवान जल्दी सफल किया करे, शंकर भगवान मन का संकल्प सफल जल्दी किया करे, इन वास्ते मैंने शंकर भगवान के लिए आराधना करनी चाहिए। दाद मैं उन्हीं घर में पाचो बेटो बनकर के जन्म नहीं चाहूं, उन घर में मैंने जन्म लेना है, उन्हीं माता पिता की सेवा करनी मैंने, ओ काम मारे तो आत्मा नहीं, लेकिन चाहूं तो शंकर भगवान से प्रार्थना करूं तो वे कृपा कर सके है, ऐसो मन में विचार कर आप श्री करवत शिव हेत चढ़ायो काशीपुरी मनोरथ भायो। काशी में चलोगी और काशी में जाकर के जेटे पहले क्रोध लिया करता नहीं, संकल्प करके जो क्रोध लेता क्रोध के ऊपर छलांग मारता तो अपनी भावना के अनुसार ही उन्हें जन्म मिलता वापस, तो वही काम करियो। पहले उन्हीं घर में पाचो मारो जन्म हुए, लारे माता पिता घणे रोता गया, अरे एड़ो बेटो कटो मिले लारे, एड़ो बेटो कट मिली रे पाचो, भक्ति जन्म ले वातन और मन में संकल्प उन टाइम वही रही है कि मैं भक्ति करने के लिए उन्हीं घर में उन्हीं माता पिता रे पाचो पुत्र रूप में मैंने जन्म लेऊंगा, वहां सेवा करूंगा, ऐसे मन में मैंने भावना ले, मारी जो पत्नी वे वह मारे दाहिनी भुजा बन करके आकर मारे साथ निभावे, ऐसी पत्नी होनी चाहिए आज्ञाकारिणी। दसवें महीने रे मैंने पाछो जन्म उगियो अठे उन्हीं घर में मारो आ गया, दसवें मास पुत्र जन्म आयो और नाम भी पहले सीताराम, तो अब की भी सीताराम ही नाम आयो है, सूरत भी पहले जेड़ी हगई थी चेहरो है जेड़ो जेड़ो, और बड़े होने पर सगाई भी हुई थी पाची उन्हीं घर में, पहले घर हुई जिन घर में सगाई हुई पाची, कन्या उत्सव मिलियो भल भर कन्या उठे भी बड़ो उत्सव है कि मन चौको बरी भर मिल गयो, ब्याह करन लेन आया पाचा उन लड़की ने घरे, जो बड़ो भाई आवाज लगाई वही उन्हें आवाज लगाई पानी में लेना, हगेरे की बात करे तो कोई अंतर नहीं, बड़े भ्रातु क्यों हिलो मारियो हे श्री नीर लाव भर अभी, ये पत्नी अभी जल्दी से जल भर करके लेके आओ स्नान करनो है। सुनने वाला अचंबो करे आई बात तो पहले कह कवान छोड़न भागो कटे वही पाचो भाग नहीं जा, बात कही है कि बेरी वे बात बेरो चेहरे और बेड़ो और सारा स्वभाव दिखाई दे रही है, सब लोग आश्चर्य करने लग गए, सुनते ही वह चटपट उठी बाल्टी भर करके लेके आ गई, जो आदेश मिलियो आज्ञा पालन करियो, आज्ञा पाए टैल सुखदाय, उन्हें बाद में जो भी आज्ञा देने लगा वह आज्ञा पालन करने लगी। पीर शास्त्री जस भे जाको ऐसे खूब तत्परता से अपने पति की सेवा में लग गई, तो पीर में शास्त्र में सब जगह उन्हें जय जयकार होने लगी, सब कोई कहे ओ बहुत बढ़िया है, पीर रात कहे बेटी अच्छी है, सात साल कहे हमारे बीजनी बहुत अच्छी है, सीताराम श्री मत पाको ऐसे सीताराम रे मंदिर माने भी संतोष सुखियों के वास्तव मायने मैं कोई काम करूं तो उन काम रे मायने आज जरूर साथ दे बेला, ये तो आगे चल करके कोई काम करूं बीचे रोड़ा अटका दे तो क्यों क्यों काम बेकार हो जावे, आज्ञाकारी नहीं बैठो इन वास्ते। अब पति की सेवा के लिए वह आप पीर भी नहीं जावे कदी, हमेशा ससुर और सासुर मंदिर मायने बड़ी चौकी लागे क्योंकि हमारी भी सेवा रे मायने कोर कसर राखे नहीं, टहल करे और हमारी आज्ञा के अनुसार ही आपने चाल चलन रखे, नित्य नेम बराबर टेमो टेम करे, समय माते अपना सारा काम पूरा करे, कोई काम रे मायने भूल नहीं लावे, आपने शरीर को कदे आराम नहीं देखे, केवल सेवा रे प्रति ख्याल रखे, कोई सेवा रे मायने कमी नहीं रह जावे, इन बात रे मायने बहुत सचेत रहा करे। इन प्रकार करता करता समय आने पर माता पिता चला गया, जथाशक्ति जो माता पिता के जाने के बाद में अब जो कुछ भी अंत्येष्टि संस्कार वगैरह करना चाहिए वैसे कर करा दिया, और पैतृक जो कर्तव्य आपने पूरा निभाया, निभाने के बाद में काज करावर की नो सारो, अब दोनों हरि नाम उचारो, अब माता पिता की सेवा रहे, जो को भार कम पड़ गयो, जना सीताराम आपने पत्नी ने कहे अब आपारे काम धंधो तो कोई है को नहीं, बैठो हरि भजन करो, दोनों दिन हरि भजन करो, अब दोनों निश्चिंत होकर हरि नाम उचारो, अब धर्म को दरवाजो बैठा भजन करे, सेवा चाकरी करे, धर्मात्मा को दरवाजो दे करके सब कोई चल करके दरवाजे माते आवे, आने वाला ने कोई अन्न की सेवा वाला ने अन्न की सेवा सु संतुष्ट करे, जल की सेवा ने वाला ने जल सु, कपड़े पर सेवा वाला ने कपड़े सु संतुष्ट करे, और जिन्हें जिन्हें जिन प्रकार की आवश्यकता है वारी आवश्यकता ने पूरी कर, भगवान ने प्रणाम कर वारो आशीर्वाद ले। अब देह प्राणी आशीष कावत कहवंत जो मुंडा आशीष कहीं दे भाई आंतली आशीष दे, तो स्वाभाविक ही जिना संतुष्ट होकर के जावे, अरे भाई बतायो शास्त्र लिखे है दरवाजा मत आयोड़ो अतिथि, जिन दरवाजे से निराश होकर के लौट करके जावे तो वो कहीं करे मारा आगलरा निराश वेदना पे चीत हो गई देवे को नहीं, हमारा पुण्य है वो तो ले जावे, आपका पाप उठे पटक जावे, पाप छोड़ जावे और हमारा पुण्य लेके चलो जावे, पुण्य मादा है गच्छति तो आदर्शा करे। लेकिन मैं बड़ी सावधानी से भगवान रो भजन करता हुआ निरंतर भजन में लागोड़ा, परमार्थिक कार्य मायने हमेशा लागोड़ा रिया करे। गांव लोग कुल जिस विस्तरी, गांव वाला लोग भी हमारे इन प्रेम भाव ने और दुनिया की सेवा चाकरी ले करके बहुत ही संतुष्ट है, बहुत ही संतोष का अनुभव कर लिया है। अंजल उत्तर किणिन देवे, सीताराम कहे जो कर ही गांव लोग जस विस्तरी, बिरकारु तो पंच बैठे सोई, आज समय पतिव्रता सोई, वर्षा काल को समय हो, गांव रा अतय करने वास्ते लोग वाग बैठा 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 बातें करे कि देखो भाई पहले शास्त्र में आप पतिव्रता को नाम सुना जरूर है, लेकिन इन जमाने रमाने पतिव्रता तो सीताराम री पत्नी है, प्रत्यक्ष दीखती जागती, प्रत्यक्ष में पतिव्रता आ है, को कह पार्क पर यू कही था परीक्षा लिए बिना कहीं था पड़े पतिव्रता है कि नहीं है, परीक्षा लिए बिना कोई पतो पड़े, आगे भाकर तो आगे फूट रही ला गया करे, कने जावे अंठा पड़े ठोकरा लागे, इन वास्ते को कह पारक परवानो कर लो चालो न कहीं न केज न भेड़ा होकर के, और सीताराम रे घरे गया। सीताराम आया ने अतिथि ने बड़े प्रेम भाव से आदर सम्मान दे, आसन बिछा करके वाले विराजमान करिया, बड़ो सुखी हो प्रसन्न होकर के कहवे महाराज पधारो, किकर पधारनो यो आपरो, मारे लिए कोई आज्ञा दिलाओ। बे लोग कहने लाग्या भाई माने थारे घर रो समाचार मिलियो कि थारे घर में जो थारी स्त्री है बड़ी पतिव्रता है सती है, तो मैं ऐसे सती को दर्शन करनी चाहवा। तो कह महाराज सती है वो तो मैंने पतो नहीं, लेकिन जैसी है जैसी पत्नी घर में है उन्हें आवाज रे तावत घिरत भवन में तिरिया, लोका बाहर वचन उचरिया, तुमरे घर घर पद्मधारी विप्र नम्रता गिरा उचारी। उन टेम वह पत्नी जो छीनी घर में घी गर्म कर रही थी, घी तपा रही थी, रसोई में बैठी लोग बाग बारे आने बैठा बातें करता, वहां घर में बैठी बैठी मारी बातें सुन रही है, तो आपने घर में पतिव्रता स्त्री है तो मैं वहां दर्शन करनी चाहूं। ब्राह्मण नम्रताओं कहने लागे महाराज ओ परमात्मा रो कोई बनायेड़ो संजोग हो, इन वास्ते मारे इन घर में जैसी मैंने चाहिए थी उन्हीं प्रकार की पत्नी मिल गई है, आ सब आप लोगों रो गुरुजनों रो ही प्रताप है और कोई बात नहीं महाराज। अब वे लोग मैं देखनी चाहवा, उनते में पतिदेव आवाज लगाई कयो कंथ सी वेगी आवई, बार पर सीताराम जी आवाज लगाई, इस भागनी बड़ भागनी बाहर जल्दी आओ, बाहर आओ जल्दी, इतनी बात माने कही। ज्यों आवाज लगाई पतिदेव बुला रिया है, एकदम वो घी में ध्यान लागोड़ो घी गर्म हो रही है, तो एकदम उचक गई ज्ञान सो गिरत माय सो शुद्ध बुलावे वस्त्र शुद्ध रही नहीं काई, ओढ़ो उन टाइम ओढ़ होको ने नीचे पड़ियो, उन्हें याद नहीं आया कि मैं बारे जाऊं तो ओढ़ ओढ़ तो जाऊं, जी उगाड़ी हिजी उर्जी हुआ तो दौड़ परिन बारे आएगी, पर आवाज लगाई कि बाहर आओ, तो हिजी उर्जी बारे चली आई, वस्त्र शुद्ध रही नहीं काई, ध्याई तच्छिन वायक सोई, वस्त्र ओढ़ भली विधि आओ, गिरत भवन के माय धरावो, हाथ जोड़ आगे बैठाड़ी, प्रज्ञावान जस प्रीति बाढ़ी। अब बाहर आने पर उन्हें उगाड़ी आयोड़ी देखी है, तो उन्हें उगाड़ी देख करके सीताराम और दूजा लोग भी कह रहे ओढ़ना तो ओढ़ना, कपड़ा तो पहनना होड़ा, यूं कहीं आ गया जो, ऐसे कैसे आ गई हो, कपड़े तो अच्छी तरह पहन ओढ़ करके आओ, आज्ञा दी इतना वापस गई और फिर हाउल ढंगसर कपड़ा पैर ओढ़ करके बाहर आई। आज्ञा ही पति है इनमें और शरीर ने पति नहीं बांधे ये बात, इन प्रकार बाल बुद्धि लोग बाग देखे, वास्तव में जो आज्ञाकारिणी और पतिव्रता स्त्री जो है, इन बातों माने पूर्ण विश्वास हो गयो, बाल बुद्धि लोग बाग आश्चर्यचकित होकर के तरह तरह की घर में बातें करता करता आप अपने घरे चला गया। ऐसे सीताराम की जो पत्नी है बड़ी सती बड़ी पतिव्रता और ऐसे पतिव्रता के भाव के साथ में प्रवाहित तो होकर के सीताराम जी आप रो पूरो घर बार त्याग दियो, घर भी है दूसरे ने दे दियो, और ऐसो मन में नहीं कि मैं मारे घर में रहूं, मारी स्त्री मारे साथ में रहे, अभी भावना नहीं, समर्पण भाव सो दूसरा के लिए आप पूर्ण रूप से वह गर्भ इत्यादि को परित्याग कर दे। ऐसे सीताराम जी जो है अद्भुत जन अद्भुत कथा अद्भुत गुरु भगवंत दास भक्त अपरम अतुल जानत संत महंत, अद्भुत तो संत महात्मा है, अद्भुत ही भक्तजन है और अद्भुत ही अनोखी वाणी कथाएं है भैया, सत्पुरुष का प्रभाव बड़ा विचित्र है, हमारे लिए स्वर्ग सु लायड़ो अमृत रो कलश भी सीताराम दूजा ने दे दियो, आप नहीं खायो पियो, दूसरा दूसरा दे दियो, आप रिली नहीं। आ बात सुनने के बाद जो चूड़ाला के विषय में सुखध्वज के विषय में रानी वापस बात पूछी कि महाराज मैंने बताओ, शुद्ध कन्या पूछे कि चूड़ाला रानी किन प्रकार अपने पति को कल्याण करियो, गोप भगत रानी की क्रिया पति समझाए पार उतरिया, सुखध्वज ऐसो बढ़ राई चार वर्ण परजा सुखदाई, पूर्ण आशा घटघट करहे छाप भूपता सब सिर पर है, जीते जुद कर सूर सधीरा लोभी जीत्या दाम गंभीरा, विषयानंद के ब्याह रचावई राज हमारे ऊणत नावई, चौदह विद्या जिती जगमाई सब ऊपर नरपत घोषाई, बल ज्ञानी प्रज्ञावंत सारा सुखध्वज सबके सिरे बुहारा। आज गोप भक्ति गुप्त रूप से भगवान की भक्ति करने वाली रानी चूड़ाला थी, जो अपने पति ने समझा करके पति को कल्याण कर दियो। सुखध्वज नामक एक ऐसा बड़ा भारी प्रतापी राजा था, चारों वर्ण पर उसका बराबर दबदबा, सारे लोगों को वो सुख देने वाला, कोई भी उस राजा के विरोध में चलने वाला नहीं, चारों वर्ण के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी के प्रति केवल पक्षपात ऐसी बात नहीं, सबके लिए समान रूप से सुखदायी, सबकी आशा उसने पूरी की, कोई भी प्राणी उसके राज में ऐसा नहीं था जो आशा पूरी नहीं होने से निराश हुआ हो, राजाओं के ऊपर भी उसकी छाप पड़ती थी था, राजा लोग भी उसका लोह मानने लगे थे, युद्ध में शूरवीरता के साथ में बड़े बड़े राजा लोगों को उसने जीत लिया, लोभी आदमियों को पैसा दे दे करके अपने वश में कर लिया, और वो लोभ के कारण से उनकी जय जयकार करते, विषयी लोगों को ब्याह रचा करके ब्याह के लिए पैसा दे दे करके उनको अपना बना लिया। इनमें एक ही बात है कि मेरे राज्य में किसी की मनोकामना अधूरी रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी इच्छा परिपूर्ण होनी चाहिए, ऐसी मन में उसकी निष्ठा है। जो 14 विद्या कहलाती है, ब्रह्म ज्ञान रसायनी ईश्वर धर्म वेदास्तता ज्योतिषम एवं व्याकरणम धनुर्जलतरणम वैद्यमेवम कृषि कोकम वाहन वाज नटनम संबोधनम चातुरी विद्या नाम चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्ति नो मंगलम। 14 विद्या कहलाते हैं। देखो, ब्रह्म ज्ञान, रसायन और बातचीत सुनना, ये भी विद्या है। वैद्य का काम करना, ज्योतिष का काम करना, व्याकरण पढ़ना, धनुर्विद्या सीखना, पानी पर तैरना सीखना, संगीत गायन सीखना, नाटक करना, घोड़े की सवारी, कोक शास्त्र की जानकारी, खेतीबाड़ी का काम करना और चतुराई हर एक बात में, ये 14 प्रकार की विद्या कहलाती है। राजा 14 प्रकार की विद्या का पारंगत जानकार था। सबके ऊपर राजा का बोलबाला है, राजा का प्रभाव है। बल ज्ञानी प्रज्ञावंत सारा सुख ध्वज सबके सिरे पर, बलवान हो, ज्ञानी हो और कोई बुद्धिमान हो, राजा सुख ध्वज सबके शिरोमणि में गिना जाता था। आठवीं पहर अष्ट काम भोगादिक जेते, मर्त लोक में आनंद देते, सबको जीत लिए निरपराई, त्रिपद किए प्रभुता पाई, एक दिन मन में कियो विचारा, अर्धंग्या मन लियो निसारा। काम के जो 8 प्रकार के जो भाव हैं, जो भोग के अनेक प्रकार तरीके हैं, मृत्यु लोक में जितने भी आनंद लेने के तरीके हैं, वो सब राजा के अनुभव में किए हुए थे। राजा ने सबको जीत लिया था, ऐसे बड़प्पन पाकर के सबको संतुष्ट किया। अब एक दिन राजा ने बैठे बैठे मन में विचार किया कि मेरे राज में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसकी इच्छा पूरी नहीं हुई हो, परंतु मैंने बाहर के लोगों को तो सबको देख लिया, सबकी इच्छा पूरी कर दी, पर घर में तो कभी देखा ही नहीं। अरे पत्नी को तो मैंने कभी कहा बात पूछी नहीं कि तेरी क्या इच्छा है, अब चलो पत्नी की इच्छा पूरी करूंगा पहले। अर्धंग्या मन लियो न सारा, उसकी क्या इच्छा है इसका भी पता करना चाहिए। राजा महल में गया, रणवास में जाकर के अपनी रानी के पास बैठा। रानी ने स्वागत करके पलंग पर बिठाया और चरणों में बैठ गई, विनम्रता पूर्वक कहने लगी है, पतिदेव क्या आज्ञा है? राजा कहने लगे, सुनो प्रिय रानी श्री, कहो मनोरथ बात, इच्छा सोई लीजिए, हम हैं तुम्हारे नाथ। देखो, मैंने अपने राज्य में किसी आदमी को ऐसा नहीं छोड़ा है जिसकी इच्छा अपूर्ण रह गई हो, पूरी नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं छोड़ा है। सब कोई मेरी जय जयकार करते हैं, सब कोई मेरे अधीन हो चुके हैं और सब मेरे कहे अनुसार काम करते हैं। अब मैं चाहता हूं, ए प्यारी रानी, तेरे भी मन में कोई बात हो, कोई इच्छा हो तो बता दे, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तेरा मनोरथ पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा पति हूं। इसलिए अपने पति से जो कुछ तुम्हें लेना हो आज मांग सकती है, मैं खुले दिल से ये बात तुम्हें कह रहा हूं, तुम सुनो। कहा लीजिए तुमसे धनी सब सुहाग के धाम, पति आज्ञा अधीनता सोई उत्तम वाम। पत्नी ये बातें सुनकर के कहने लगी है, हे महाराज, आप मेरे सुहाग को बढ़ाने वाले पतिदेव प्राप्त हो चुके हो, आप जैसे मुझे पति मिल चुके हैं और मैं आपके कान से सुहागिन बन चुकी हूं, पति की आज्ञा में चलना ही पत्नी का कर्तव्य होता है, और ऐसा जो पत्नी की आज्ञा, पति की आज्ञा में चलने वाली पति होती है, वही संसार में श्रेष्ठ पत्नी कहलाती है। इसलिए बस मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूं, इसी में अपना भला मानती हूं, और मुझे अब क्या चाहिए, क्या लेना आपसे, जो लेना सब मिल गए। मम तिरवाच कहूं सत अभी, दिल की गुंज खोलिए सभी, मन भावे सो करूं कृतार्थ, मम घर घरणी को ऊणारत। अब तो दूसरी जगह सब लोग ऐसे कहते थे राजा तो बातें सुन सुन करके फूल के कुप्पा हो गया, सबकी मैंने इच्छा पूरी कर दी, तो अभी इस एक इच्छा पूरी करने में क्या जोर आएगा, अब तो अभी इसकी पूरा कर रहा। जब रानी ने ये बात कही कि पत्नी का कर्तव्य है केवल पति की आज्ञा पालन करो, लेकिन राजा ने फिर कहा, सुखदेव ने कहा, मैं त्रिवचन बोल करके अर्थात ब्रह्मा विष्णु महादेव को साक्षी करके ये बात बता देना चाहता हूँ, अपने दिल में कोई छुपी हुई बात हो, गुप्त बात हो, खुलासा करके स्पष्ट करके मुझे अभी बता दो, खोलिए सभी मन भावेशो करूं दादा, जो मन की इच्छा हो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करके तुम्हें कृतकृत करूंगा, अर्थात तुम्हारी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रखूंगा। मेरे घर पर रहने वाली पत्नी ही अगर कोई इच्छा अपूर्ण रहती है तो मैंने क्या किया दुनिया का भला। इसलिए पतिव्रत लगे न दोष, ए आज्ञा दीजे प्रथम दे सुन मन पारोष, ए निष्वायक विमलता। जब दोबारा फिर राजा ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महादेव की साक्षी के रूप में वचन बोल करके कहा, तब रानी कहने लगी है, हे पतिदेव, पहले तो आप कृपा करके मुझे ये आज्ञा दे दो, मैं आपके सामने कुछ भी वचन बोल दूं तो उसका मुझे दोष नहीं लगना चाहिए। ये तो पति के सामने बोलने में पत्नी का दोष है, लेकिन आप आज्ञा दे दो, तुम चाहे तो बोल दे, कोई दोष नहीं लगेगा, मैं तो छुट्टी हो जाऊं, उसके बाद में मैं कुछ भी बात कहूंगी। दे सुन बंद पारोस ए निस्वायक विमलता, ये शरीर है, वाणी है जो है ना, वो वाणी वास्तव में हमारा शरीर का सच्चा संबंध हुआ करता है। शरीर है ये तो पड़ोस के समान का है, वाणी है वो तो घर के आदमी के समान है, और शरीर है ये पड़ोसी के घर के समान है। तो अपना घर होता है उस घर की पहचान वाणी से हुआ करती है, तो मैं वाणी से ही आपके वाणी के माध्यम से पूर्ण रूप से हड़का बन जाना चाहते हूं कि मैं कुछ भी कहूं तो मुझे दोष नहीं लगना चाहिए। दे सुन मन पारोस ए निस्वायक विबलता वाणी का। अब राजा ने ये बात सुनी तो बस, अरे वाह क्या बात है, कहत नृपत सतवाच दोषण तुमको को मत लगो, जू प्रतिभाषत काच दिल की वायक पारखा। राजा सुनकर के कहने लगा है, आज मैं सच्ची वाणी कहता हूं, तुम जो कुछ भी मुझे कहोगी तुम्हें कोई भी दोष नहीं लगेगा। दिल की जो परीक्षा वाणी ही हुआ करती है, और मैं ये वाणी सत्य रूप से तुम्हारे सामने कह रहा हूं, जैसा चेहरा होता है वो चेहरा कांच में वही चेहरा दिखेगा जैसा होगा, तो वाणी में मैं जो कुछ हृदय में हूं वही वाणी के द्वारा कांच के रूप में तुम्हारे सामने कह देना चाहता हूं, जो कुछ भी तुम मांगो इच्छा हो वो बात कह सकती हो, तुम्हें कोई प्रकार का दोष कलंक नहीं लगेगा, तुम निर्दोष होगी। अब रानी छुट्टी हो गई, अब जो कुछ भी बोले तो बोलना, बोलने के लिए निर्भय होकर के बोलने का विचार किया। रानी ने गुरुमहाराज का स्वरूप हृदय में धारण किया, गुरुमहाराज का चिंतन किया, सदगुर स्वरूप धार उर्वाय कर निरप गिरा ज्ञान दर्शाय कर, वो गुरुमहाराज का स्वरूप हृदय में धारण करके और निष्पक्ष ज्ञान को प्रकट करने वाले शब्द वो राजा के सामने बोलने लगी। निष्पक्ष वचन जो पक्षपात पूर्ण पक्षपात से रहित है ऐसे वचन, और जो कल्याण करने वाले वचन है ऐसे वचन वो चुड़ाला रानी कहने लगी है। पहले पहले फटकार दी है, का दहे पड़ पशुआ राजा, ए राजा पशु तू कह रहे हो कि मैं दूंगा, तुम क्या दोगे, देना आता तुम्हें कुछ। कहा दही पढ़ पढ़े लिखे पशु हो, पढ़े लिखे मूर्ख हो तो तुम हो, कोई तो अनपढ़ मूर्ख होते हैं और तुम पढ़े लिखे मूर्ख हो। राजा को कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे शब्द सुनूंगा, लेकिन पहले बिजली के समान कड़क की बोतो, अब बोले तो करे क्या, नरक जान को सभी समाज आज तक तैने जितने भी काम किए सब नरक में ले जाने के काम किए, एक भी काम कल्याण का नहीं किया देने। याद रखो, यहां कितने दिन बैठे रहोगे राज्य में, जीते हो हारे हो किनको कहिए, मैंने उसको जीत लिया, मैंने उसको जीत लिया, मैंने उसको जीत लिया। अरे जीता क्या है, तू हार गया सबके सामने, क्योंकि आर्या ने हरी मिले जीता जाने जम है, हारे जाने हरी मिले जीते जाने जम। सरलता है बिना क्या कभी कोई भगवान के दरबार में पहुंच सकता है? और जितने लोगों को जीता इतना अहंकार बढ़ा तुम्हारे में, और जो अहंकार बढ़ा है तो ये क्या भगवान के धाम में जाने के लक्षण है? तिरपत का विषय रस लिए, विषयों को रस सेवन करते करते क्या कभी किसी को तृप्ति हुई है जीवन में? संसार में बड़प्पन अहंकार बड़ाई ये जब तक इस हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तब तक किसी जीव की कभी भलाई नहीं होने वाली है। जंगम जड़ स्थूल और चेतन जितने भी है, काम क्रोध इत्यादि सब परिपूर्ण है। संसार के भोग यहां भोगते होती, पशु पक्षी सभी भोग भोगते हैं, उनमें तुम्हारे में क्या फर्क है बताओ? छोटे बड़े आत्माधारी मोह वासना ताप करारी, सभी को अपना परिवार प्यारा लगता है, सबको अपना कुटुंब अच्छा लगता है, सबको अपना मोह होता ना, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, सबको अपना अच्छा लगता है। तो ताप अग्नि जैसे जलाती है, अग्नि की जलन जैसे संताप देती है, इसी प्रकार ये मोह की ज्वाला सबको जला रही है, सबको जला रही है, और तू उन सब में बड़ा ऊंट है, दूसरों से है ना उनसे सबसे बड़ा ऊंट है, तुम्हें बताया तू उस तरह मोटो सब माई विषय मोह मेहमत घर जाई। विषयों के और मोह में ऐसा मदुन्मत हो गया है कि पता ही नहीं मैं कहां जा रहा हूं कहां जा रहा हूं, ऐसा ऊंट है तो बड़ा ऊंट। काल किया जो आज श्रावे, आज किया सो परसों पावे, जो कल कर लिया उनकी आज बखान कर रहे हो, और आज करोगे वो परसों पाओगे, याद रखो। आगे मरोगे तो आज क्या पाओगे, और आज तुम भुला नहीं करोगे तो आगे क्या अच्छा होगा तुम्हारा? तो गग भेदन एक रति को खान पान प्रज्ञास्ते को, केवल भोग और वासना में रात दिन लगे रह रहे हो, तुम्हें जो अगला रास्ता याद रखना चाहिए याद है ही नहीं। सदा शीत ऋतु वाम अधीना, हमेशा ही सर्दी के वशीभूत हो, मान लो कामंद हो रहे हो, सर्दी के समय ऊंट जैसे विशेष कामंद होता है, उसी प्रकार तुम भी ऊंट के समान घु 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 कर रहे हो। एक रति का तुम्हारे को खोज पता नहीं है, अगला ख्याल नहीं है। खान पान प्रज्ञास्ती को याद रखो, स्त्री के वशीभूत होकर के और भोगों के वशीभूत होकर के काम का जो घाव तुम्हारे अंदर रात दिन बढ़ रहा है, तुम्हारे बल को खत्म कर रहा है, इस बात का तुम्हें पता ही नहीं है। गर्मी का मौसम तुम्हें याद ही नहीं आ रहा है, वो दिन याद रखो जिस दिन यमराज जी आएंगे और आकर के पकड़ करके डंडा मार करके फांसी में बांध करके लेके चलाएंगे, चले जाएंगे, उस टाइम क्या तुम्हारे ये जीते हुए राज्य, जीते हुए राजा और ये संसार के भोग तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे? राजा तो ऐसा माथा झुका करके बैठ गया हो, ब्याल छछुंदर नृप में भई चोरी करता पकड़ो सही। जैसे किसी चोर को चोरी करते पकड़ लेते हैं ना, उस समय क्या दशा होती है उसकी बेचारी, चोरी करते पकड़ा जाए चोर, बाद में पकड़ा जाए तो किया नहीं गया क्या पता, लेकिन चोरी करते पकड़ा गया। अयम भोग वासना की तृप्ति के लिए तो कह रहा है मांग कर ले तू, और उस विषय में इवां वो सामने जो फटकार दे रही है, ब्याल छछुंदर नृपगत की, सर्प किसी बिछुंदरी को पकड़ लेता है नहीं, अब करे तो क्या, वो खा जावे तो मुश्किल और छोड़े तो मुश्किल, खावे तो मर जावे छोड़े तो अंधा हो जावे, पकड़ना आसान लेकिन छोड़ना या खाना दोनों मुश्किल हो गया। राजा की अब मैं इसको छेड़ तो दिया, अब करूं क्या, अच्छा तो होता मैं इससे बात ही नहीं करता, लेकिन चक्कर में फंस गया। ओहो मैंने तो देखा मैं इसकी भी तृप्ति कर दूंगा, लेकिन इसने तो उल्टा मुझे ही डांट डाला। नृप में भाई चोरी करता चोर के समान आज राजा स्वयं
आकुल व्याकुल है, कुछ जवाब नहीं दे पाया। रानी उठ करके चल दी, बस चोट मारनी थी उसको चोट मार दी, करंट लगाना, बैटरी चार्ज कर दी। अब इसका परिणाम क्या होता आगे देखा जाएगा। चक्र तो दिले चित चाय मुकुते जाय बन आवही, नैन नैन को खाए नृप में भई दुरंत गति। पागलपन आ गया, चित्त में चारों तरफ जा रहा है, बेचैनी हो रही है, मुख से जवाब नहीं आ रहा है, आंख के सामने आंख करके देख नहीं सकता राजा। जिस रानी के लिए इतना विषय भोग की सामग्री समझ रहा था, आज वही रानी कितने ज्ञान के माध्यम से आज इसे पीछ पछाड़ रही है। नृत्य में भई दुरंत गति, अब राजा में आज बड़ी अनोखी दुर्दशा पैदा हो गई। यहां रहूं नहीं को, कैसे बदन दिखाए हूं, मरणो नहीं को हो, कह जाइए पहिए दशा। अब राजा ने मन में विचार कर लिया कि आज अब यहां तो मैं रह सकता नहीं, क्योंकि इस रानी को मैं अपना कौन सा मुंह बताऊं, ये मुंह तो उसको दिखा नहीं सकता, तो यहां से जाने में भला ही है, घर छोड़ करके भाग जाओ या मर जाओ, और या फिर जैसा रानी ने कहा वैसा बन करके दिखाओ। तीन बात है, या तो जैसा इसने कहा वैसे बन के दिखाऊं, या मर जाऊं, या काला मुंडो कर ब्रोन आगड़े जाऊं। या तो मैं घर में अब रहने लायक नहीं हूं, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, मैं नहीं रहूंगा। ऐसा मन में रात्रि के समय राजा सोच रहा है। अब सोचे जगह न सोचना, रात रात विचार करने दो, अभी लाइन क्यों घरों बारे काटो। आगे राम आज्ञा के अनुसार कल इस राजा को किस प्रकार वापस बोध देती रानी आकर के, वहां जाकर के जो त्याग करता उस त्याग में भी बहुत ही अपने तत्व को इसके जीवन भर करके और कल्याण का मार्ग बताती है। सज्जनों, माताएं बहने सोचिए कि औरताएं लुगाएं 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 कहीं ऐसी लुगाएं, राजा लोगों ने भी और ज्ञानी लोगों ने भी पछाड़ देने वाली है, धन्यवाद है। ऐसी माताओं को बार बार वंदन है, बार बार प्रणाम है।
अरे जो दिन जाय भजन रे लेखे, सो दिन आसी गिनती में। जो दिन जाय भजन रे लेखे, सो दिन आसी गिनती में। हे सो दिन आसी गिनती में, हो सो दिन आसी गिनती में। गुरुदेव की।